اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قلندر شعور، صفحہ نمبر 131، ٹاپک ہے آدمی کے اندر بجلی کا بہاؤ۔ اس میں، اس سے پیشتر یہ جو ہم نے پرسوں مطالعے میں جو پڑھا کے انسان رنگوں کا مجموعہ ہے، تو یہ رنگوں کے حوالے سے اب بجلی کا بہاؤ۔ تو یہ رنگ جو ہیں، یہ اصل میں ہمارے اندر جب بہتے ہیں تو اس کو بجلی کا بہاؤ کہا گیا ہے۔ یہ رنگوں کا بہاؤ کرنٹ کہلاتا ہے۔ دیکھیں نا، کرنٹ کا لفظی مطلب ہے بہنا، کرنٹ کا لفظی مطلب ہے بہاؤ۔ حضور مرشد کریم کا ارشاد ہے کہ بحیثیت مجموعی کائنات میں جو رنگ قلندر شعور سے نظر آتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 11,500 ہے۔ یعنی جب آدمی قلندر شعور سے آراستہ ہو جاتا ہے تو اس کو مجموعی طور پہ کائنات میں جتنے رنگ نظر آتے ہیں وہ تقریباً 11,500 ہے۔ اصل میں یہ ہر رنگ جو ہے اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا رنگ ہے۔ تو جب قلندر شعور سے آراستہ ہو کے آپ اللہ کی صفات کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں، تو اصل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ 11,500 رنگوں کا کھیل دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ سائنسدان اب تک تقریباً 60 سے زیادہ رنگ دریافت کر سکے ہیں، اور جب عام حالات میں رنگوں کا تذکرہ آتا ہے تو ان کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے۔ یعنی جب ہم رنگوں کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 7 رنگ بنیادی ہیں۔ اب فی الواقع کتنے رنگ ہیں، اس کا پورا علم اللہ کو ہے، لیکن قلندر شعور سے یہ بات مشاہدے میں آ جاتی ہے کہ کائناتی افراد کی بنیاد رنگ ہیں، اور یہ رنگ جب بہاؤ یعنی فلو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ کائناتی افراد کی بنیاد رنگ ہیں۔ کائناتی افراد، یہ لفظ دیکھیں ذرا، افراد نہیں کہا، کائناتی افراد، کائنات میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ کرے ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، یہ سب کائناتی افراد میں شامل ہیں۔ تو ان کی بنیاد رنگ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ رنگوں سے کیا مراد ہے، اللہ کی صفات۔ اور یہ رنگ جب بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اب کرنٹ، الیکٹریسٹی ہی زندگی بنتا ہے۔ یعنی یہ جو فلو آف کلرز ہے یا کلر ویوز ہے، یہ دراصل کرنٹ بن جاتا ہے، الیکٹریسٹی بن جاتا ہے، اور یہ زندگی بنتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں کہ آدمی سینکھیا کھا کر اس لیے مر جاتا ہے کہ سینکھیے کے اندر رنگوں کے بہاؤ یعنی الیکٹریسٹی کا وولٹیج آدمی کے اندر کام کرنے والے وولٹیج سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی گویا سینکھیے میں اگر 1,000 وولٹ کام کر رہے ہیں، اس کی وولٹیج 1,000 ہے، تو آدمی کے 6 وولٹ ہیں یا 12 وولٹ ہیں یا 20 وولٹ ہیں یا 50 وولٹ ہیں یا میکسیمم 100 وولٹ ہیں اس کے اندر جو کرنٹ ہے۔ تو جب اسے وہ 1,000 وولٹ کا جھٹکا پڑتا ہے تو اس کا بیچارے کا وہ بلب آف ہو جاتا ہے، سوچ یعنی کیا فیوز ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، یہ وولٹیج جو ہے، یہ اب آگے دیکھیں مثال کیا دی ہے کہ یہ ایسی ہے، مثال ایسی ہے جیسے 60 واٹ بجلی کے بلب میں کئی 1,000 واٹ بجلی دوڑا دی جائے تو بلب فیوز ہو جاتا ہے۔ हम जब करंट को छूते हैं तो शॉक लगता है, यानी झटका लगता है। शॉक लगने से मुराद ये कि आदमी के अंदर दौड़ने वाली बिजली में एक हलचल पैदा हो जाती है, और इस हलचल या तलातम को आदमी की पूरी बॉडी महसूस करती है। और अगर आदमी के अंदर काम करने वाली बिजली का वोल्टेज कमजोर है या मिकदार से कम है, तो आदमी गिर भी जाता है और बेहोश भी हो सकता है। इसके बरक्स अगर आदमी ऐसा तरीका इख्तियार करे जिस तरीके में बिजली का बहाव बराहे रास्त अर्थ नहीं होता, तो उसे शॉक या झटका नहीं लगता। यानी अगर वो लकड़ी पे खड़ा होकर एक बिजली की एक तार को पकड़े एक वक्त में, दोनों तारों को पकड़ेगा तो गया वो मीडियम बन जाएगा बिजली के फ्लो के लिए, तो उसको उसकी वोल्टेज उसकी बर्दाश्त से बाहर होगी तो झटका लगेगा। तो यानी अगर वो तरीके से बिजली को हैंडल करे तो उसको झटका या शॉक नहीं लगता। तो इस बात से ये मुसल्लमा मुनकशिफ हो गया कि कायनाती तखलीक में, यानी दोबारा लफ्ज कायनाती आया, कायनात की हर चीज में नेगेटिव और पॉजिटिव असूल के तहत ऐसी नौ भी मौजूद है जो बिजली के बहाव को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। यानी नेगेटिव पॉजिटिव जिस तरह दोनों करंट जरूरी हैं, इसी तरह ऐसी मखलूक भी है जो बिजली के फ्लो को रोक सकती है या अपने अंदर जज्ब कर लेती है बजाय अर्थ करने के। अब इस कुलिये से, यानी ये एक इक्वेशन बना रहे हैं, ये एक नेगेटिव पॉजिटिव की मिकदारें बराबर होना भी जरूरी है, इसलिए भी इसको कुलिया कहा गया है। इस कुलिये से इंकशाफ होता है कि एक दो दस बीस तखलीकी अवामिल, ये जो क्रिएशन के फैक्टर्स हैं, ये ऐसे भी हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी जखीरा करने की सलाहियत रखते हैं। यानी कई अवामिल, कई फैक्टर्स ऐसे हैं, दस बीस हैं, दो च एक दो नहीं, दस बीस, कि ये इलेक्ट्रिसिटी को जखीरा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जी बात तो चली थी किताबुल मुबीन से, बात चली थी लोहे महफूज से, बात चली थी हजीरों से, तो ये रंगों से होती हुई, आपकी सारी सलाहियतों के बयान से होती हुई, ये इलेक्ट्रिक के फ्लो पे, रंगों पे आई, फिर रंगों से ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो पे आ गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान को अपना ये सिस्टम समझना है, अपने अंदर करंट की इन मिकदारों को बढ़ाना है। अब यहां से ऑनवर्ड जो ये किताब है आपको प्रैक्टिकल की तरफ ले जाएगी, कलंदर शऊर के हसूल के साथ साथ आपको अपने जहनी सकत को, सलाहियतों को, अपने अंदर मौजूद करंट जज़ब करने की सलाहियत को, अपने अंदर मौजूद करंट के इस्तेमाल को कैसे कैसे इस्तेमाल करना सीखना है। ये इसलिए इन बातों का तذکرہ शुरू हुआ। ये कोई कहते ना मौजू से हटकर बात नहीं है, ये बहुत जरूरी बात है, वरना इसके बगैर बात मुकम्मल नहीं होगी। देखिए ना, अगर आपको कलंदर शऊर से आरास्ता किया जा रहा है, तो उसका अगर आपने किताबुल मुबीन तक का सफर करना है, जाहिर है वो सफर आपको कलंदर शऊर के जहन से ही तय करना है, वो तय ही उसी शऊर से होगा। ये आम मादी शऊर इन राहों पे नहीं चल सकता। तो उससे आरास्ता करने के लिए अब प्रैक्टिकल का बयान आ रहा है कि किस तरह से हम अपने अंदर इन करंट्स को, रंगों के फ्लो को बढ़ा सकते हैं। हजूर मुर्शिद करीम का इरशाद है कि कलंदर शऊर हमारी रहनुमाई करता है कि हम तखलीकी फार्मूलों के तहत अपने अंदर हर किस्म की गैर मरई, यानी जो इनविजिबल है, जो नजर नहीं आती, गैर मरई मरई कहते हैं जो नजर आए, अपने अंदर हर किस्म की गैर मरई इनविजिबल सलाहियतों को अपने इरादे और इख्तियार से मुतहर्रक कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, ये बहुत जरूरी जुमला है कि हम अपने अंदर हर किस्म की गैर मरई सलाहियतों को अपने इरादे और इख्तियार, दो चीजें हैं, आपका इरादा और आपका इख्तियार, आपको इख्तियार भी हासिल है, अब आपने इरादा करके उसको मुतहरक करना है या नहीं करना, यह फैसला आपका, विजिबल सलाहियतों को या इनविजिबल सलाहियतों को, यह सब आप पे डिपेंड करता है। एक आदमी जब अपने अंदर दौड़ करने वाली बिजली या नस्मा से वाकिफ हो जाता है, सुन लीजिए, बिजली को क्या कहा, नस्मा। नस्मा मैंने क्या अर्थ किया कि ये हमारा जहन है, बल्कि कई जगह मुर्शिद करीम ने ये बात वाजे की, हजूर कलंदर बाब औलिया ने इस बात को वाजे किया कि हमारा जहन ही नस्मा है। और ये जो यहां पे नस्मा को बिजली कहा गया, अपने अंदर दौर करने वाली बिजली या नस्मा, ये बहुत तवज्जो से नोट करने की बात है कि बिजली या नस्मा आपके अंदर जो दौर कर रहे हैं, रंग दरअसल यही नस्मा बन रहा है, नहीं, नस्मा की हरकत का नाम है रंग, उनके तूले मौज का नाम है रंग, किसकी, नस्मा की हरकतों कि तवालत को रंग कहा है, फिर उनके बहाव से जो करंट पैदा होता है। देखिए हर चीज कैसे वाजे की जा रही है कि एक आदमी जब अपने अंदर दौर करने वाली बिजली या नस्मा से वाकिफ हो जाता है तो वो बिजली के बहाव को रोक भी सकता है, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज का जखीरा भी कर सकता है और उस जखीरे से मावराई दुनिया में बगैर किसी वसीले के परवाज भी कर सकता है। ये बहुत कीमती लफ्ज है। देखें, हम लोग समझते हैं कि हम ख्याल, अल्लाह ने ख्याल डाला आपके जहन में क्या उड़ सकते हैं, आपने खुद उड़ने के बजाय, उड़ना सीखने के बजाय जहाज बनाना गवारा किया, हेलीकॉप्टर बनाना गवारा किया, लेकिन नहीं किया तो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके खुद उड़ना नहीं सीखना चाहा, ये क्या बात हुई। हालांकि इनके लिए आपको अपने अंदर वोल्टेज के जखीरे को बढ़ाना है, यानी अपने नस्मा से काम लेना सीखना है, ये मतलब है इन चीजों का। ये मतलब नहीं है कि आपने सचमुच तारें पकड़ के तो अपने आप को चार्जिंग पे लगा लें। और फिर ये कि मावराई दुनिया में बगैर किसी वसीले के परवाज भी कर सकता है। अब जरा सा सोच के देखें कि मावराई दुनिया में ख्याल के जरिए ही परवाज होगी ना, और ख्याल क्या है, ये नस्मा ही तो फ्लाई करेगा, लेकिन अगर उसके अंदर करंट होगा तो वो फ्लाई करेगा ना, उसकी चार्जिंग पूरी होगी तो वो ऑन होके तो आगे काम करेगा। हजूर फरमा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जखीरे के बाद, यानी जब आपके अंदर ये स्टोरेज, ये कैपेसिटी बढ़ जाती है कि आप इस रंगों के बहाव के फ्लो की मिकदार में इजाफा कर सके या कर ले, तो उसके अंदर ऐसी सकत पैदा हो जाती है, यानी फिर वो कर सकता है, सकत का मतलब है सकना, यानी कर सकना, कि वो अपने इरादे और इख्तियार से आसमान और जमीन के किनारों से बाहर निकल जाता है। यानी अगर आपको मैं ये अर्ज करूं कि ये बहुत आसान है, तो आप कहेंगे नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं कहूंगा आसान है। मैं आपको एक मिसाल अर्ज करता हूं, आप तो सब्र करें। आंखें बंद करके आप तसव्वुर करें कि आप जहां बैठे हैं यहां से आप ऊपर उठ रहे हैं, कितने ऊपर उठ गए, छत तक। अब जरा इस छत से और ऊपर उठे तो दूसरी मंजिल तक, फिर और ऊपर उठे तीसरी मंजिल, फिर और ऊपर उठे मजीद 10 फुट, मजीद 10 फुट करते जाएं, ऊपर उठते जाएं, महसूस करें ज़हनी तौर पे कि आप ऊपर उठ रहे हैं। उठते उठते आप कुर्रे अर्जी की फिजा से बाहर 100 मील ऊपर उठ गए, आप 200 मील ऊपर उठ गए। अब जरा जरा वहां से आप इस नीचे देखें, तसव्वुर करना है ना, ये सारा तसव्वुर करने से, कभी ध्यान इधर गया ही नहीं। और हम हैरत, मुंह पे अंगूठा, होंठों पे उंगली रख के, हो ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम कह रहे हैं कि भी सारा खेल नस्मा का है, आप इमेजिन करना तो सीखें, आप इमेजिन करना शुरू तो करें, फिर बाकी काम मुर्शिद का है कि वो आपको सपोर्ट करे, अल्लाह के इस निज़ाम का है कि वो फरिश्तों को आपके सामने ले आए। अगर आपके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का ज़खीरा ही नहीं है तो आप फरिश्तों को कहाँ से देख लेंगे, आप जिन्नात को कहाँ से देख लेंगे। अभी तो आप अपनी इस कुर्रे अर्जी की फिजा से ही बाहर निकल के नहीं देख पा रहे। तो फरमा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जखीरे के बाद, याद रखें, इससे पहले नहीं हो सकता, उसके अंदर ऐसी सकत पैदा हो जाती है कि वो अपने इरादे और इख्तियार से आसमान और जमीन के किनारों से बाहर निकल जाता है, निकल जाता है। ये नहीं कहा कि निकल सकता है, पहले कहा सकत, फिर कहा जब सकत पैदा हो जाती है तो वो निकल जाता है उसकी आंखों के सामने। ये नहीं कहा कि उसके सामने, और करें उसकी आंखों के सामने। क्या मतलब हुआ कि आपकी वो नजर जो बातिन में देखती है उसके सामने अपनी जमीन की तरह कहकशां में, यानी पूरी गैलेक्सी आपके सामने आ जाती है, फिर उसमें बेशुमार जमीनें आ जाती हैं, और फिर जिस जमीन को वो चाहता है उसको देख सकता है, और जिस तरह फिर वो अपनी जमीन पर आबाद अल्लाह की मखलूक को देखता है, उसी तरह खरबों दुनियाओं का भी मुशाहिदा करता है। ये है इंसान का इस इलेक्ट्रिसिटी के जखीरे के इस्तेमाल का असल डायमेंशन या असल सिमत, ये है वो असल दिशा, ये है असल टारगेट कि हमने अपनी निगाह का इस्तेमाल किस लिए करना है। जब आप के अंदर जखीरा बढ़ेगा रंगों के फ्लो का, तो आपकी बातनी नजर के सामने ये सारा निज़ाम, कहकशानी निज़ाम, और फिर उसके अंदर ये तमाम जो आपके शमसी निज़ाम है वो आ जाएंगे। हजूर मुर्शिद करीम का इरशाद है कि कलंदर शऊर जब बेदार होता है तो वो ये देख लेता है, जान लेता है और समझ लेता है। और करें, कलंदर शऊर जब बेदार होता है तो उसकी निशानियां क्या हैं कि वो देख लेता है, वो जान लेता है और समझ लेता है। तीन सतह, देखना, जानना और समझना। क्या समझ लेता है, क्या देख लेता है, क्या जान लेता है? वो जान लेता है, वो समझ जाता है कि इस दुनिया की तरह और भी बेशुमार दुनियाएं मौजूद हैं। पहला सबक क्या समझ आती है कि ये एक दुनिया महज एक स्क्रीन है, और इस तरह की लाखों स्क्रीनें हर वक्त काम कर रही हैं, करोड़ों अरबों खरबों स्क्रीन, और हर दुनिया हमारी दुनिया जैसी है। जिस तरह हमारी दुनिया पर आदमी आबाद हैं, इसी तरह दूसरी दुनियाओं में भी आदमी बसते और रहते हैं। जिस तरह इस दुनिया में अफजाइश नस्ल का सिलसिला जारी है, इसी तरह दूसरी दुनियाओं में भी शादियां होती हैं और औलादें पैदा होती हैं। गर्ज ये कि इस दुनिया में और इस दुनिया से बाहर बेशुमार दुनियाओं में भी खुर्दोनोश, रहन सहन, खेती बाड़ी, कारोबार और मरना जीना सब मौजूद है। देखें जरा इस जुमले पे गौर करें, इसमें कितने राज वाज़े हो गए कि इस दुनिया में हो या इस दुनिया से बाहर बेशुमार दुनियाओं में, हर जगह खाना पीना, फिर रहना सहना, खेती बाड़ी, कारोबार, ये चीजें गिनवाई, ये सारे काम और मरना जीना, यानी पैदा भी हो रहे हैं मर भी रहे हैं, ये सब निजाम काम कर रहा है। यहां रुक जाते हैं फिलहाल, ये जो आज हमने बात पढ़ी इसको डिस्कस करना चाहें तो मैं हाजिर हूं, इस पे कोई सवाल पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूं। ये बहुत कीमती बात है कि ये सारा रंगों का फ्लो जो है ये असल में इलेक्ट्रिसिटी, और मैंने इसका खुलासा आपसे अर्ज किया कि नस्मा की हरकत का नाम या उसकी तबालत का, उसके तूले मौज का नाम रंग है। जी जनाब, जी वालेकुम अस्सलाम
सर, मुझे ये पसंदीदा जितने भी कलंदर शोर से जो मुंसलिक जो लोग होते हैं, जिस इस फन से या इस अल्लाह की दी नेमत से जो मुस्तफीज होते हैं, इसमें स्पेसिफिकली कोई लिमिटेशन होती है या कोई किसी को 5 साल मेहनत करके मुकाम मिल जाता है, किसी को 10 साल लग जाते हैं, किसी को 30-30 साल ये बुजुर्गी अता होती है?
जी हाँ, ऐसा कोई क्राइटेरिया ये है कि आप लगे रहें, लगे रहो मुन्ना भाई। देखे ना, आपको वाजे कर दिया कि मकसद क्या है, आपको वाजे कर दिया। देखे ना, तख्लीक क्या है, तख्लीक है मकासद और तकाजों की यकजाई। मकसद आपको समझ आ गई कि मकसद है अल्लाह की बात को समझना, अल्लाह के काम को समझना, मकसद है अल्लाह के निजाम को समझना, मकसद है अल्लाह की सिफात को समझना, मकसद है अल्लाह की जात को समझना। कितनी बातें अर्ज की मैंने,
सही बात।
पहला दर्जा है अल्लाह की बात को समझना। तो अल्लाह की बात से क्या मुराद है? कुरान, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात क्या है? फिर अल्लाह के काम, आप अपने जिस्मानी निजाम पे गौर करना शुरू करें, आप पौधों पे गौर करें, आप सब्जियों पे गौर करें, आप जानवरों पे गौर करें, ये सब अल्लाह का काम है, अल्लाह के काम है, काम काम काम। पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन बना रहे हैं, निशास्ता बना रहे हैं, जानवर वो ऑक्सीजन और निशास्ता इस्तेमाल करके चर्बी और गोश्त बना रहे हैं, आप माशाल्लाह चूंकि सरदार हैं सबके, आप सब कुछ खा रहे हैं, आप पौधा भी खा जाते हैं, आप जानवर भी खा जाते हैं। ये खा पी तो हम रहे हैं, लेकिन खाने पीने का भी तो वो मकसद है ना, कि जिंदगी जिंदगी आपके अंदर मुतहरिक है, जिंदगी मुतहरिक है तो क्या हो रहा है, अब उसका कोई मकसद है ना। तो मकसद ये कि आप अल्लाह के बात को समझें, अल्लाह के काम को समझें, उसके बाद इस काम के पीछे पूरा निजाम काम कर रहा है। ये मैं अलहदा कर दिया आज मैंने कि बात समझना एक काम है, काम को समझना ये एक और काम है, फिर उस काम के पीछे बने हुए निजाम को समझना ये तीसरा काम है, फिर इस निजाम के पीछे काम करने वाली सिफात को समझना ये बिल्कुल एक और काम है, फिर इन सिफात की हामिल जात को समझना। ये कलंदर शऊर का सफर शुरू हुआ, ठीक है, आप ये आज शुरू कर दें, बाकी सारी जिंदगी नहीं, अब्दुल आबाद तक हमने यही काम करना है। लिमिट कहां से ले आए? लिमिट लेस जात से वास्ता है। और आप लिमिटेशन मांग रहे हैं,
सही, यानी एक किस्म की उम्र कह रहे हैं।
अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये आपको देखें आप नहीं, ये बात आपने ये लफ्ज गलत इस्तेमाल कर लिया है, ये आपको एजाज है, अल्लाह ने एजाज से नवाजा है, आपने नाफरमानी और बगावत करके इस एजाज से हाथ धो लिए, अपने फीते उतार के वहां जन्नत में फेंक कर आ गए। अल्लाह चाहता है आप इनसे आरास्ता हो जाएं, आपके वो फीते वापस लग जाएं, आप अल्लाह के, देखो ना मेरी जान, आप एक सिस्टम में काम कर रहे हैं तो सिस्टम के मालिक की बात समझेंगे, उसके काम को समझेंगे, उसके निजाम को समझेंगे, उसकी सिफात को समझेंगे, उसकी जात को समझेंगे। हाँ ये है कि ये चूंकि हमारा ये फेज ऑफ लाइफ जो है यहाँ की जिंदगी महदूद है, लेकिन आप पटरी पे चढ़े तो सही, ये मरने के बाद भी ये सफर जारी रहना है, रात में भी जारी रहेगा, कयामत में भी जारी रहेगा, और हशर नशर के बाद भी जारी रहेगा। जी और कोई सवाल? जी
ये जो अभी बात हो रही थी डॉक्टर साहब ने बात की इन सब चीजों के लिए, मैं जरा से ये जानना चाह रही थी कि इन सबको जानने के लिए अल्लाह के सिफात को रात को तो वो सख्त होनी चाहिए उस रात को होने के लिए, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जब तक के जखीरा नहीं होगा तो जब तक के ये नहीं हो सकती, सख्त पैदा नहीं हो सकती,
आगे जब हम किताब पढ़ेंगे तो हजूर मुर्शिद करीम ने कोई बात अधूरी तो छोड़ी नहीं है। अभी तो ये जुमला आज आपने सुन लिया, आपके जहन में आ गया, अब ये सवाल भी आ गया कि भी कैसे, तो इंशाल्लाह ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये कैसे का जवाब आपको दिया जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक ही जुमले में सब बता दूं कि भाई ये सांस आहिस्ता लेना है ताकि आपके अंदर ऑक्सीजन का जखीरा हो, सोचना इस तरह से है, खाना इस तरह से है, पीना इस तरह से है, तो बात खत्म हो जाएगी। नहीं बात सिंपल है, यही तो वो फरमा रहे हैं कि बात बहुत सिंपल है, आपका जहन बना रहे हैं वो, आपको आगाह किया गया, आज आपने सुना, आज आपने पढ़ा कि भाई ये नस्मा ही बिजली है, ठीक है ना। आप और हम गानों में सुनते रहे कि मैं बिजली की तरह थिरकती हूँ तो हम सारे इसी बिजली के जोर पे तो थिरक रहे हैं, ठीक है जी।
कोई एक सवाल थोड़ा सा इससे जरा सा वो हटके, मतलब हटके से मुराद ये कि थोड़ा लॉ कलम का एक ज़हन में आ रहा था कि आपने कहा रंगों से मुराद अल्लाह की सिफात है, तो सर ये जो जब आपने ये कहा तो मेरे ज़हन में आया लॉ कलम में जो तदल्ला का जिक्र हुआ, तो क्या फिर ये रंगों का भाव जो है ये तदल्ला भी हुआ? मतलब
बिल्कुल, मैं इससे आगे आपको कुरान पे ले जाता हूँ ना, सिबगतुल्लाह है वह मन अहसना सिबगतुल्लाह है, अल्लाह का रंग, और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है, हैं? यहाँ पे रंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ?
बिल्कुल हुआ है जी सर, बिल्कुल हुआ।
बताएं, मैं अपने पास से थोड़ा ही कह रहा हूँ।
नहीं नहीं सर, मतलब मैं गया, तो मैंने
आपका जहन जहाँ तक गया मैंने आपको उससे आगे की मंजिल भी अर्ज कर दी।
शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
देखे ना हजूर कलंदर बाबा औलिया ने, हजूर मुर्शिदे करीम ने क्या किया, उन्होंने अल्लाह की बातों की वजाहत की, हमारा वो जहन बना रहे हैं कि हमें अल्लाह की बात तो समझ आना शुरू हो। फिर मैंने अर्ज कर दिया कि भी अल्लाह की बात समझने के साथ साथ अल्लाह के कामों को समझना है। देखे ना इसी को आपने तसव्वुफ में तौहीद कौली और तौहीद फेली और तौहीद अफाली और तौहीद फेली कह गया, माफी चाहता हूँ, तौहीद कौली, तौहीद अफाली, तौहीद सिफाती और तौहीद जाती के नाम से मुतारिफ कराया है। ये तौहीद कौली क्या है? कि अल्लाह की बात को समझना। अब तौहीद अफाली क्या है? अल्लाह के कामों को, अल्लाह के निजाम को समझना। मैंने उन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को आसान अल्फाज में अर्ज कर दिया कि तौहीद अफाली से मुराद उसके फेल को, उसके काम को और उस काम के पीछे सिस्टम को समझना। फिर तौहीद सिफाती है अल्लाह की सिफात को समझना कि आप काम को देखें तो समझें कि किसके पीछे। मसलन अब ये तख्लीक का अमल सारे का सारा अल्लाह की सिफत रहीमी से ताल्लक रखता है, सिफत क्योंकि वो रहम से ताल्लक है। अब देखे ना, हमारा जब जहन बनेगा और हम किसी काम के पीछे अल्लाह की सिफत को देखेंगे तो फिर रफ्ता रफ्ता हमारा जहन ला महाला उस जात की तरफ जाएगा जिसकी वो सिफात है, जो उन सिफात को बरत रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे जी। आप सब की इस शफकत का और इस मोहब्बत का और इस जोश और जज्बे से सीखने की ख्वाहिश का अल्लाह ताला इसमें आपको मजीद बरकतें अता फरमाए जी, और मजीद फहम और जहन की रसाई अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़।